हरे कृष्णा। अभी दो दिन पहले हम लोग नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मना रहे थे, भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव जिस दिन वो प्रकट हुए थे। और उस दिन हमने सुना था कि कैसे भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध किया इत्यादि। और अब वर्णन करेंगे कि कैसे जब भगवान प्रकट हो गए, बड़े क्रोध में थे, तो किस प्रकार प्रह्लाद महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, बहुत से निर्देशों को देने वाली हैं, बहुत बड़ी हैं। करीब 40 श्लोकों में प्रह्लाद महाराज ने इन प्रार्थनाओं को कहा है, तो उन सारी प्रार्थनाओं की चर्चा करना तो आज संभव नहीं होगा। प्रारंभ करेंगे और फिर आगे धीरे धीरे जैसे समय जाएगा आगे की प्रार्थनाओं को भी सुनने का प्रयास करेंगे। तो हिरण्यकश्यपु को मार दिया, भगवान बड़े क्रोध में हैं, शांति नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में जितने देवता थे उन्होंने स्तुतियां की, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ और सब घबराने लगे उनके सामने जाने से। हालांकि जानते थे कि हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी इतना डर लग रहा था क्योंकि इतने भयंकर थे भगवान और क्रोध में बहुत थे। और ऐसा स्वरूप कि उसकी उसके पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतड़ियों को निकाल लिया, अपने गले में डाल लिया, खून खून हो गया, उनके मुख पर खून लगा हुआ है, बड़े चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो ये देखकर सारे देवता घबरा गए, कोई सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इंद्र को कहा, राजा हैं इंद्र, तो सारे देवताओं ने कहा आपको जाना चाहिए, राजा को ये बहुत सहना पड़ता है, जब भी कहीं गोली खानी हो तो राजा को आगे जाना। हाँ, जब श्रेय मिलता है तो भी राजा लेता है, प्रजा कार्य करती है श्रेय राजा ले लेता है, लेकिन जब प्रजा गलती करती है तो उसका दंड भी राजा को ही भुगतना पड़ता है। तो सारे देवताओं ने कहा जाओ, आप ही जाओ सामने, राजा हो। इंद्र ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, ऐसी अवस्था में मैं नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी को बोलो। तो सबने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, इंद्र तो केवल राजा हैं, आप तो सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं, आप जाइए। तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए। ब्रह्मा जी के घबराने का कारण क्या था? एक तो भगवान बड़े क्रोध में थे और दूसरा ब्रह्मा जी ने गलती की थी, ऐसा वरदान दे दिया था हिरण्यकश्यपु को कि पशु नहीं मारेगा, मनुष्य नहीं मारेगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया था, और भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा। तो ब्रह्मा जी भी नहीं जा रहे हैं। उससे पहले लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाइए, अब भगवान हैं, पत्नी को देखकर तो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी ने देखा, बोला ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, इतने गुस्से में तो पहली बार देख रही हूँ, वो भी डर गई। तो न इंद्र गए, न लक्ष्मी गई, ब्रह्मा जी भी नहीं गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रह्लाद को कहा कि तुम जाओ। क्यों तुम जाओ? उन्होंने दो कारण दिए। पहला कारण, ये जो क्रोध इतना कर रहे हैं तुम्हारे पिता पर कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे, तुम्हारे ही पिता थे ना ये, इसीलिए तो क्रोध कर रहे हैं इतना। और दूसरा, तुम्हारे कारण कर रहे हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ होता तो इतने क्रोधित थोड़ी होते भगवान। तो ये तुम्हारी, मतलब एक दृष्टि से ब्रह्मा जी कह रहे थे तुम्हारी गलती है, ये पिता भी तुम्हारे हैं और क्रोध भी तुम्हारे लिए कर रहे, तुम ही जाओ सामने। तो खैर प्रह्लाद चले गए, प्रह्लाद को डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब इतने बड़े बड़े देवता घबरा गए, शिव जी उपस्थित थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे, लक्ष्मी देवी स्वयं नहीं जा पाई, तो क्या प्रह्लाद उन सब से श्रेष्ठ था? इतना बड़ा हो गया कि प्रह्लाद को कोई भय नहीं हुआ? तो क्या कारण है? भगवान दिखलाना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में चाहे कितने ही बड़े पद पर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय में प्रहलाद जैसी शुद्ध भक्ति नहीं है तो वो भगवान के समक्ष नहीं आ सकता। तो इसको दिखलाने के लिए उन्होंने इतने सारे देवताओं को घबरा दिया, लेकिन प्रहलाद बड़े आराम से आ गए। प्रहलाद भगवान के सामने आए और प्रहलाद को अब प्रार्थनाएं अर्पण करनी थी, लेकिन उससे पहले प्रहलाद ने दंडवत प्रणाम किया, गिर गए भगवान के सामने। छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो जब प्रणाम करते हैं ऐसे गिर जाते हैं नीचे, चोट भी नहीं लगती उनको, बड़ी जल्दी से धड़ा ऐसे गिर जाते हैं। हम लोगों को तो प्रणाम करने में बड़ा थोड़ा समय लगता है, पांव मोड़ते हैं, बैठते हैं, कहीं लग नहीं जाए, घुटनों में दर्द अगर ज़्यादा हो गया तो फिर और 10 दिन मंदिर नहीं आ पाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन बच्चे एकदम सीधा लेट जाते हैं। तो 5 साल के बच्चे थे, तुरंत लेट गए भगवान के सामने। और भगवान ने देखा, नरसिंहदेव ने, भागवत में वर्णन है सुपाद मूले, सुपाद मूले मतलब भगवान ने देखा कि मेरे चरणों के पास गिरा हुआ है ये बालक। तो प्रार्थनाएं अर्पण करनी थी, शांत करना था, तो प्रहलाद ने पहला कार्य किया दंडवत प्रणाम करना। तो जैसे ही भगवान ने प्रणाम देखा तो तुरंत उनको उठा लिया, और भगवान ने न केवल उठाया, शांत हो गए, और फिर भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद के सर पर रखा, स्पर्श किया अपने हाथ से प्रहलाद को। अब सारे देवता देख रहे थे, थोड़े उनके कहते हैं कि जान में जान आई कि हाँ अब थोड़े शांत हो गए, प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं। तो 5 साल का छोटा सा बालक उसके सर पर ऐसे हाथ फिराने लगे नरसिंहदेव, और उस समय प्रहलाद ने प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान को। तो आप सोचिए, किसी भी व्यक्ति के हृदय में बड़ा गर्व आ सकता है कि ब्रह्मा जी शांत नहीं कर पाए, शिव जी कर नहीं पाए, इंद्र कर नहीं पाए, लक्ष्मी कर नहीं पाई, लेकिन मैंने कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हृदय में थोड़ा तो गर्व अहंकार आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हुए ही सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान से कहते हैं, बड़ी नम्रता दर्शाते हैं। मतलब वो भगवान को ये बताना चाह रहे थे कि आप ये मत जानिएगा कि मैं अहंकार से आपके सामने खड़ा हूँ। तो उन्होंने भगवान से कहा कि ये इतने बड़े बड़े देवता इंद्र हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं इत्यादि, इन्होंने इतनी सारी प्रार्थनाएं अभी अभी अर्पण की हैं, और उनकी प्रार्थनाओं से आप शांत नहीं हुए, आप संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर मेरी क्या योग्यता, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। क्या कुल है मेरा, असुर कुल में मैंने जन्म लिया है, क्या उम्र है मेरी, अगर ब्रह्मा जी से तुलना की जाए तो 5 साल का हूं, ब्रह्मा जी तो अभी लाखों साल के हो चुके हैं, तो ना उम्र है उनके सामने, ना मेरी कोई भक्ति है, ना कुल है। तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले नम्रता दर्शाई। देखिए, भगवान जब किसी को स्पर्श करते हैं तो उनके स्पर्श से ही ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। भागवत में वर्णन है कि भगवान के स्पर्श से प्रहलाद महाराज के अंदर जो भी थोड़ा बहुत अज्ञान था वो सारा दूर हो गया, केवल स्पर्श मात्र से। ऐसा ही वर्णन हम ध्रुव महाराज की कथा में भी पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज ने जब भगवान को देखा तो कुछ बोल नहीं पाए, 5 साल के बालक थे, कभी प्रार्थना अर्पण ही नहीं की थी भगवान को, पता नहीं था क्या बोलना है, लेकिन भगवान ने जब अपने शंख से स्पर्श कराया तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को अर्पण करने लगे। तो ये हम लोग देखते हैं कि भगवान के स्पर्श का क्या असर होता है। तो जब भगवान स्पर्श करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, सबसे पहले अज्ञान दूर हो जाता है, क्योंकि जो भी भगवान के संपर्क में आएगा वो अज्ञान में नहीं रह सकता। यस्तम वेद स वेदवित, भगवद गीता में कहा गया है, जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जानता है, और इसका प्रमाण भी हम लोग भागवत में शास्त्रों में देखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, भगवान ने स्पर्श किया, तो भगवान के स्पर्श का पहला असर होता है कि अज्ञान चला जाता है हृदय से। दूसरा असर होता है भगवान के स्पर्श का कि अज्ञान तो चला गया, अब हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवल तभी तो प्रार्थनाएं कर सके ना, अगर भक्ति नहीं होगी तो कौन प्रार्थनाएं अर्पण कर पाएगा भगवान को। तो भक्ति उदय हो जाती है हृदय में केवल भगवान के स्पर्श मात्र से। तो अज्ञान दूर हो जाता है, भक्ति का उदय होता है और साथ ही साथ प्रेम का संचार होता है। व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, असीम प्रेम आ जाता है और उस प्रेम को हम देखते हैं। ध्रुव महाराज की आंखों में आंसू आ गए भगवान को देखने से, भगवान के स्पर्श से। तो ऐसे ही भगवान ने स्पर्श किया प्रहलाद को। अब प्रहलाद प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नम्रता सबसे पहले। तो वो अपनी प्रार्थनाओं के प्रारंभ में ही नम्रता दिखला रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि एक भक्त को भगवान की भक्ति में नम्र होना चाहिए। हमारा ये जो अहंकार है इस भौतिक जगत में बहुत बढ़ता है, छोटी छोटी चीज से अहंकार बढ़ता है। हमें कोई डिग्री प्राप्त हो जाती है, हम अहंकारी हो जाते हैं। नौकरी मिल जाती है, अहंकारी हो जाते हैं। प्रमोशन मिल जाती है, अहंकारी हो जाते हैं। और भक्ति क्या है? उन सारे अहंकार को त्यागना। किस चीज का अहंकार हमें? तो प्रहलाद महाराज ये दिखला रहे हैं कि पहले गुण नम्रता होना चाहिए। वैसे भौतिक जगत में भी अगर हम नम्र हैं तो हम भौतिक जगत में भी लोगों का हृदय जीत सकते हैं। जो काम तलवार से नहीं होता, बंदूक से नहीं होता, वो प्रेम से हो जाता। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। एक समय एक राजा के महल में राजा खड़े थे तो एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए। राजा ने देखा, अपने सैनिक को भेजा, जाओ देखो क्या कह रहा है। सैनिक ने आके बताया भिखारी है, भिक्षुक है, कुछ खाना वाना मांग रहा है। तो राजा के हृदय में आया कि चलो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो राजा ने कहा बुलाओ उसको अंदर। तो बुला लिया। अब राजा बैठ गए सामने और राजा ने पूछा कहिए क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा महाराज बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाने को मिल जाता तो। बस इतनी सी बात, आदेश दिया सेवक को, सेवक भोजन लेकर आ। और उन्होंने सेवक को पहले ही बोल दिया था कि जब मैं कहूँ तो कुछ लाना नहीं, केवल दिखाना कि ला रहा हूँ। तो सेवक को बोला सेवक भोजन लाओ। तो अब सेवक ऐसे आ रहा है, कुछ है ही नहीं हाथ में, वो ऐसे आ रहा है और लाके बड़े धीरे से उसने सामने रख दिया। और राजा कहने लगे भिखारी को, अरे अरे बहुत बढ़िया, समोसे बड़े अच्छे हैं और ये रसगुल्ला भी बड़ा अच्छा है, खाओ खाओ। अब भिखारी सोच रहा है खाऊं क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो खाओ खाओ। लेकिन उसने सोचा, वो जान गया कि मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने रसगुल्ले गुलाब जामुन आए और मैं भूख से इतना बेदर्द, आई मीन इतना मेरी हो गया कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा ठीक है, अगर राजा मजाक कर रहे हैं मैं भी इनका साथ दे। उसने कुछ नहीं कहा। तो राजा ने कहा खाओ खाओ। तो उसने भी ऐसे लेकर वो खाने लगा। तो राजा ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा, कौन सा क्या अच्छा लगा? बोले समोसा बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो स्वीट भी लो। तो उसने कहा हाँ थोड़ा। कैसा? बहुत अच्छा। कौन सा स्वीट अच्छा? रसगुल्ला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक। राजा ने कहा और लोगे? नहीं नहीं बहुत हो गया, पेट भर गया एकदम। तो और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो उसने कहा कि एक, वैसे मैं बड़ा गरीब हूँ, एक सुंदर स्त्री मिल जाती, पत्नी मिल जाती तो विवाह कर लेता। बस इतनी सी बात। सेवक उन वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को बुलाओ। तो वो आ गई। आ गई मतलब वो ले आया कि ये खड़ी हैं, कोई है ही नहीं। तो राजा ने कहा चुन लो कौन सी चाहिए इसमें से, तुम्हें कौन सी पसंद है उससे विवाह करा देंगे। तो उसने कहा वो जो छठे स्थान पर खड़ी है वो बहुत पसंद है। कोई खड़ा ही नहीं था, ना छः थे ना पाँच थे। तो राजा हंसने लगा, रे ये तो केवल पांच हैं, यहाँ छठे स्थान पर तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा। फिर राजा ने कहा अब क्या चाहिए? तो उसने कहा कुछ रहने का स्थान, महल है मेरे, यहाँ से बाहर निकलो दरवाजे के दोनों तरफ मेरे महल हैं, जो भी पसंद आए ले लो, कुछ था ही नहीं बाहर। तो भिखारी ने सोचा आज का दिन खराब है, क्या कर सकते हैं, खाने को भी ऐसे ही मिल रहा है, पत्नी भी ऐसे ही मिल रही है। वैसे वो अच्छा है अगर ऐसी पत्नी मिले व्यक्ति को, इनविजिबल अदृश्य पत्नी हो तो और क्या चाहिए। खैर तो उसने कहा और घर भी ऐसा ही मिल रहा है, तो जाने लगा, उठ के बाहर चला गया वो। तो जब बाहर चला गया तो राजा ने सोचा कि कितना नम्र है ये, मैंने इतना उसके साथ हंसी मजाक किया, उसको कहा कि ये खाओ वो खाओ, ये खड़ी है, इस कौन सी स्त्री चाहिए, महल ले लो, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। तो राजा का हृदय बदल गया। राजा ने सैनिक को बोला जाओ बुला के लाओ उसको, बुला लाओ वापस लाओ। तो वापस बुला के लाए, राजा ने बोला सच में भोजन लाओ, भोजन कराओ उसको। तो सही का भोजन आया, उसने भोजन कर लिया। फिर पूछा कि अब और कुछ? हाँ विवाह करना, ठीक है, स्त्री दिए महल भी दे दिया कि रहो अभी। तो देखिए अगर भिखारी नम्र नहीं होता, ये नम्रता जरा सा उदाहरण है कि भौतिक जगत में भी नम्रता व्यक्ति के हृदय को बदल देती है। अगर वो नम्र नहीं होता, पहली बार राजा को कहता है ये क्या है मेरे साथ मजाक करते हो, तो राजा उठ भाग जा। लेकिन उसने भी बड़ा साथ दिया, नम्र रहा, तो फिर राजा ने भी उसके ऊपर कृपा की। ऐसे ही जब हम भगवान के सामने, भगवान तो सबसे बड़े राजा हैं, तो ऐसे ही जब हम भगवान के सामने जाते हैं, नम्र बनकर जाते हैं, तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, और कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, ना तो मेरा कोई अच्छा कुल है, जन्म नहीं लिया, ना मैं कोई देवता हूँ, तो मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो मानो भगवान ने पूछा हो कि मैंने अभी अभी तुम्हारे स्पर्श किया है तुम्हें, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। तो अपनी दूसरी प्रार्थना में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि धन से नहीं होते, विद्या से नहीं होते, मान सम्मान से नहीं होते। आपके पास बहुत सी योग्यताएं हो, आप अच्छे दिखते हो, आपके पास धन हो, आपके पास और कुछ भी हो, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। और वो उदाहरण देते हैं कैसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो उदाहरण देते हैं गजेंद्र का, कि गजेंद्र के पास क्या था, कौन सी उसने तपस्या की थी, कौन सा धन था, वो तो मनुष्य भी नहीं था, वो तो पशु था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई। तो वो कहने लगे कि ये सारी चीजें कोई योग्यता नहीं है भगवान की कृपा या भक्ति प्राप्त करने के लिए। दरअसल भक्ति की कोई योग्यता नहीं होती, भक्ति कोई भी कर सकता है, बाकी चीजें करने के लिए योग्यताएं चाहिए हर चीज के लिए। इस भौतिक जगत में भी आप में से कई लोग यहाँ पर नेवी में काम करते हैं, तो नेवी में प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए, है ना, इतनी उम्र होनी चाहिए, इतना कद होना चाहिए, इतना फिटनेस होना चाहिए, स्विमिंग यहाँ से वहाँ करना चाहिए, नहीं तो बाहर कर देते हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, है ना। तो भक्ति के लिए क्या योग्यता है, क्या भक्ति के लिए भी ऐसी कोई योग्यता है कि इतना धन होना चाहिए, इतनी पढ़ाई किए होना चाहिए, इतना उसके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, इतने साल का भौतिक जगत का अनुभव होना चाहिए। कुछ नहीं है, कोई योग्यता नहीं चाहिए भक्ति में। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता, चाहे वो कितना ही नीच पापी क्यों ना हो, वो भी भक्ति कर सकता। इसलिए भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं, कोई भी व्यक्ति। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहा गया है श्वपच, श्वपच अर्थात कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी। वैदिक शास्त्रों में कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को सबसे निम्न मनुष्य माना गया। मनुष्यों की श्रेणी में सबसे नीचा व्यक्ति वो है जो कुत्ते का मांस खाता, वेदों के अनुसार। प्रश्न आता है कि गाय का मांस खाने वाले को फिर क्या किया जाता है। अगर कुत्ते का मांस खाने वाला सबसे नीच मनुष्य माना जाता है, तो फिर गाय का मांस खाने वाला क्या माना जाता है? वो तो मनुष्य माना ही नहीं गया है। जो गाय का मांस खाता है उसको मनुष्य नहीं माना गया वेदों में, वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो शैतान है, राक्षस है। तो जो मनुष्यों की श्रेणी में कुत्ते का मांस खाता है वो सबसे निम्न माना गया। इसीलिए हर जगह पर जहां भी गुणगान करना तो श्वपच कहते हैं। श्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, चांडाल। जो कुत्ते का मांस खाता, तो मनुष्यों में सबसे निम्न कुत्ते का मांस खाने वाला माना गया है, गाय का मांस नहीं। गाय का मांस खाने वाला तो आदमी है ही नहीं, उसको तो मानना ही नहीं चाहिए कि मनुष्य है, वो तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है, स्वपच भी है, तो वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है, उसके लिए भी अनुमति है कोई भी। और उसका उदाहरण देते हैं गजेंद्र। गजेंद्र का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो बड़ा आश्चर्य होगा कि गजेंद्र भगवान की भक्ति कर सका। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहां हम लोग देखते हैं कि किसी की कोई योग्यता नहीं थी। जैसे ध्रुव महाराज, क्या उम्र थी उनकी, 5 साल के बालक, 5 साल के बालक को भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी करोड़ों साल के हो गए हैं, अभी तक भ्रमित होते रहते हैं। तो कोई उम्र की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि उम्र होने से भक्ति मिलती है। क्या उम्र थी ध्रुव महाराज की, या फिर सुंदरता, कोई कहे मैं अपनी सुंदरता से भगवान को आकर्षित कर लूंगा, तो कुब्जा की क्या सुंदरता थी। कुब्जा की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, जब भगवान मथुरा गए वृंदावन को छोड़कर, तो कुब्जा नाम की एक कुबड़ी उनको मिली। कुबड़ी यानी जिसका कुबड़ निकला हुआ था, ऐसे झुकी हुई थी, मुंह भी ऐसे ही था, कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा उसको हुई, उसको भक्ति प्राप्त हुई। तो कुब्जा की क्या सुंदरता थी, ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी, और फिर गजेंद्र का क्या ज्ञान था, गजेंद्र का क्या कुल था, कौन से ऊंचे कुल में जन्म लिया था, हाथी था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। तो गजेंद्र का उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर कथा है गजेंद्र की। गजेंद्र ये पूरा भौतिकवादी व्यक्ति था, अपनी कई उसकी पत्नियां थी, कई बच्चे थे, 50-60 बच्चे थे कम से कम उसके। तो एक दिन वो पूरे अपने छोटे सुखी परिवार को लेकर नदी के किनारे आया, और बच्चे थे, थोड़ा डर रहे थे पानी में जाने से, तो खुद चला गया। वो क्या होता है, पत्नी और बच्चों के सामने जरा जो पति होते हैं वो जरा कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो गजेंद्र चला गया, बाकी सब खड़े हैं बाहर डर रहे हैं पानी में जाने से, ये चला गया अंदर, और फिर सूंड में पानी भर भर के बच्चों को नहला रहा है, सब बच्चों को नहला रहा था, 50-60 थे, तो धीरे धीरे हर एक को नहला रहा है। फिर पत्नियों के ऊपर भी डाला, और फिर पत्नियों को पानी पिला रहा था। हाथी दो तरह से पानी पीता है, दो बार पीता है, एक सूंड से और दूसरा मुंह से, इसलिए उसका एक नाम है द्वीप। द्वीप यानी दो बार पीने वाला, दो बार पानी पीता है हाथी। तो अपनी सूंड में भरकर फिर अपनी पत्नियों को पानी पिला रहा था। तो देखिए मतलब कितना सुंदर दृश्य है, ये दृश्य आप सब देखते होंगे ना, अभी लोकल ट्रेन में जाते हैं, ट्रेनों में जा, लोकल नहीं, जब बाहर कहीं जाते हैं तो देखिए स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो पत्नी बैठी रहती है अंदर, बच्चे बैठे रहते हैं, पति बाहर आता है, वो कुछ पानी वानी खरीदता है, कुछ चीज़ें खरीदता है ना, ये सब होता रहता है ना, तो खिलाता था। ऐसे गजेंद्र भी कर रहा था, सुखी परिवार मेरा, तो पानी पिला रहा था, बच्चों को नहला रहा था इत्यादि। तो ऐसे में अचानक अंदर से मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और अब इस समय जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो अभी जिन बच्चों को पानी से नहला रहा था, जिसको पानी पिला रहा था, वो सब खड़े हैं बाहर, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और बहुत समय तक, लंबे समय तक युद्ध चला, बड़ा प्रयास किया अपनी शक्ति से छूटने का, नहीं हुआ। अंत में उसने भगवान को पुकारा, और ऐसा वर्णन है पुराणों में कि जिस समय भगवान को पुकारा तो भगवान बड़ी तेजी से आ रहे थे, बहुत तेजी से, और गरुड़ को बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अब गरुड़ पूरी स्पीड में चल रहा है अपना, फुल क्या बोलते हैं, लास्ट गियर, यू नो, टॉप गियर पे चल रहा है, मगर भगवान को लग रहा है बड़ा धीरे चल रहा है, ये आज इतना धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि जाना चाहते हैं जल्दी, मेरे भक्त ने पुकारा है मुझे, वो कष्ट में है, जल्दी पहुंचूं। तो गरुड़ को बहुत, गरुड़ चले, भगवान को इतना गुस्सा आया कि खुद उतर गए, गरुड़ को कंधे पर बिठाया और खुद भाग कर आ गए। ये बहुत धीरे चल रहा है, मतलब ऐसे हो गया कि कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी इतनी धीरे चल रही हो कि गाड़ी से उतर कर, गाड़ी कंधे पर रख कर और खुद भाग कर आ रहा। भगवान का प्रेम है भक्त के प्रति, तो रुक नहीं पाए कि इतनी जल्दी इतनी जल्दी। और जब पहुंचे तो जैसे ही भगवान पहुंचे तो वो तो अंदर था, तो भगवान ने हाथों से उसको बाहर खींचा, गजेंद्र को हाथों से खींचा, और जब उसको खींचा तो मगरमच्छ भी खींचा चला आया, क्योंकि वो तो छोड़ने वाला नहीं था, उसने पैर पकड़े हुए थे, तो मगरमच्छ भी खींचा चला है, तो भगवान ने अपने चक्र से पहले मगरमच्छ को मार दी, उसको काट दिया गला, ताकि वो निकल आए, मेरा भक्त छूट जाए। तो उस समय उसका मुख खुल गया, वो जो मगरमच्छ था वो मर गया। वैसे इस कहानी में, इस प्रसंग में हम ये भी देखते हैं कि भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करने से पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, क्योंकि मगरमच्छ की क्या योग्यता थी, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स हम लोगों को भक्त का पैर ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए जैसे गजेंद्र का उसने पकड़ा था, खून निकल रहा था, पकड़ा हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे नहीं पकड़े। तो उसकी ये योग्यता थी, तो भगवान ने पहले उसका उद्धार कर दिया क्योंकि भक्त का पांव पकड़ा हुआ था। देखिए कितनी सुंदर बात है। गजेंद्र का तो बाद में करेंगे क्योंकि गजेंद्र का तो होना ही है उद्धार, लेकिन उसका भी कर दिया क्योंकि उसने गजेंद्र के पैर पकड़े हुए थे। तो उसके बाद जब उसका मुंह कट गया, तो जहां गजेंद्र को पांव में उसने पकड़ा हुआ था तो वहां चोट लगी थी, खून निकल रहा था, तो ऐसा वर्णन है कि भगवान अपने हाथ से उसको सहला रहे थे वहां पे, मानो मलहम लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, या एक ऐसे कह रहे हो कि क्षमा करना, आने में थोड़ी देर हो गई, तुम्हारा खून निकल गया, चोट लग गई तुम्हें, थोड़ा जल्दी आता तो इतना नहीं होता, इसीलिए मतलब बोल रहा था गरुड़ को जल्दी चलो, चलता नहीं था क्या करे, तो इसीलिए भगवान बड़े सहला रहे थे उसको वहां पर। और फिर उसके बाद भगवान ने छोड़ा नहीं कि ऐसे नहीं कि ठीक है चलो हो गया अब तुम निकल गए अब अपने घर जाओ फिर से वही करो, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और चतुर्भुज रूप सबके सामने, और फिर गरुड़ पर खुद बैठे और गजेंद्र को बिठाया मुक्त रूप में, चतुर्भुज रूप में, और लेकर गए वैकुंठ भगवान सबको दिखाने के लिए। नहीं तो सब लोग बोलते ना कि भगवान की भक्ति करके क्या लाभ है, गजेंद्र ने इतना किया क्या मिला उसको, तो सबको दिखाने के लिए कि क्या मिला देखो, ऐसा होता है ना कभी कभी, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइक पर पिताजी बैठे रहते, पीछे बच्चे को बिठा लेते हैं, छोटा बच्चा होता है तो आगे बिठाते हैं, पीछे भी वो बच्चा ऐसे पकड़ के बैठा रहता है और गाड़ी बाइक चलती रहती है ना, तो ऐसे ही भगवान अपनी बाइक, बाइक तो नहीं खैर उनका गरुड़ जी थे, तो उस पर बिठा कर ले जा रहे हैं और सब देख रहे हैं कि हाँ एक पिता अपने पुत्र को लेकर जा रहे हैं वापस। तो सबके सामने गजेंद्र को लेकर गए प्रेम दर्शाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए गजेंद्र, अगर हम बात करें योग्यता की, धन की, सुंदरता की, या फिर कुछ मान प्रतिष्ठा की, या किसी शक्ति की, बल की, ज्ञान की, वैराग्य की, क्या था उसमें, आसक्त था अपनी पत्नियों में, अपने बच्चों में, खेल क्रीड़ा कर रहा था, आनंद ले रहा था, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार उसने श्रद्धा से नाम लिया भगवान का, भगवान भागे भागे आए। ये भक्ति है, इसलिए भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर कोई एक ब्राह्मण है जिसके अंदर बहुत से गुण हैं, अर्थात वो धार्मिक नियमों का पालन करता है, सत्यता पर बना रहता है, बड़ा स्थिर है इत्यादि, ब्राह्मणों के ऐसे 12 गुण बताए गए हैं पुराणों में, तो 12 गुण अगर उसके अंदर हैं भी, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ मैं एक कुत्ता खाने वाले चांडाल को मानता हूं, लेकिन वो चांडाल जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो उससे श्रेष्ठ है। अर्थात प्रहलाद महाराज यहां कुल को महत्व नहीं देते, कुल में जन्म हुआ उसको महत्व नहीं, भारत में आज भी बहुत जगहों पर कुल को महत्व दिया जाता है, कौन से कुल के हो, अरे ब्राह्मण हो बहुत अच्छा, कुलकर्णी पूरे ब्राह्मण, ऐसा कुछ कहा जाता है, पता नहीं अभी हमें और भी कई लोग होंगे ब्राह्मण, लेकिन तो अभी जन्म से परिवार से ब्राह्मण माने जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में ये 50 पैसे का धागा तो कोई भी डाल सकता है ना, बाजार में मिलता है जाके डाल लीजिए हो गया, बन गए ब्राह्मण। भागवत में लिखा गया है कि कलयुग में केवल धागा डालने से ही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। और एक कलयुग का लक्षण दिया गया आगे का कि स्नान करना यही शुद्धता मानी जाएगी, इसको थोड़ा कोई बच्चे को पकड़ी, जिसका है उसको ले पी। तो स्नान करना, अगर दिन में कोई एक बार स्नान कर लेगा कलयुग में, तो वो व्यक्ति बड़ा शुद्ध माना जाएगा, पवित्र। मतलब देखिए, आगे चलकर लोग स्नान भी नहीं करेंगे, वैसे अभी भी नहीं करते हैं, हमें पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं। हमने तो बहुत देखा है, हम कभी कभी जाते हैं विद्यार्थियों को प्रचार करने के लिए, तो बड़ा अजीब लगता है। हम गए थे एक बार, एक जगह थे, अभी पास में जाते कभी कभी, तो वहाँ 5 मिनट पहले हम गए, तो गए तो देखा वो सो रहा है। तो हमने सोचा चलो सो रहा है, उठेगा नहाएगा, समय लगेगा। तो 5-10 मिनट बाद गए तो पता चला वो तो कॉलेज चला गया। हमने कहा तो ये बड़ा, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा इतना कौन सी बड़ी बात है अगर नहीं नहाए तो, मतलब आप इतना क्यों महत्व दे रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़ा महत्व है, हमको अगर पता चले कि कोई नहाया नहीं है तो हमें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन उन लोगों को पूछिए जो नहीं नहाते, उनको क्या तकलीफ है। अरे रोज रोज नहाने से वजन कम हो जाता है ना, क्या फायदा है नहाकर। तो ऐसा कहा गया है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण केवल धागा डालने वाला वो नहीं है व्यक्ति, कि धागा डाल दिया ब्राह्मण हो गया। गुण होने चाहिए, कर्म होने चाहिए उसके, ब्राह्मण के। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वो व्यक्ति है जहां वो रहे तो गंदगी नहीं रह सकती, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण और गंदगी एक साथ नहीं रह सकते, या तो गंदगी जाएगी या ब्राह्मण जाएगा, लेकिन साथ में नहीं रहेंगे। और वही ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो है जो हृदय की गंदगी को साथ में ना रखे, या तो गंदगी जाएगी या ब्राह्मण जाएगा। तो मरने से अच्छा है गंदगी दूर कर ले हृदय की। तो इसीलिए वो कहते हैं कि केवल ऐसे किसी को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, लेकिन जो भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। और इसका प्रमाण, ये जो बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखलाए। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, कौन ब्राह्मण था वहां, कौन सा कुल था ब्राह्मण का, उनको तो ब्राह्मण बोलना भी नहीं आता था, कुल की तो बात अलग है। और कभी ये धागा तो शायद देखा भी नहीं होगा उन्होंने कि ये क्या होता है। प्रभुपाद वहां गए और ऐसे लोगों को जो मांस खाते थे, सब गलत कार्य करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने भगवान के नाम की शक्ति से शुद्ध ब्राह्मण बना दिया। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कुत्ता खाने वाला नीच व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करके श्रेष्ठ हो सकता है उन तथाकथित ब्राह्मणों से, जिन्होंने केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कार्य नहीं करते। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवान की भक्ति में लगें, अच्छे गुणों को उत्पन्न करें। अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जिएंगे, सोचेंगे कि एक दिन हम खुश हो जाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और मरने के बाद तो, जैसे एक बार एक केस चल रहा था कोर्ट में, तो कोर्ट में केस चल रहा था और दोनों पक्ष के वकील थे, एक कह रहा था ऐसा है, दूसरा कह रहा था, आपस में विरोधी पक्ष के। तो जज बैठे थे, जज ने पहले पेपर देखे, थोड़ी देर पढ़ा, और जब वो लोग एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट करने लगे, जज सो गए, आंखें बंद की सो गए। तो जो क्लर्क था, भी कितना बुरा लगेगा ना, वो लोग खड़े माय लॉर्ड एंड माय लॉर्ड, तो आंख बंद करके बैठे, तो जज सो गया उधर ही। तो क्लर्क ने जाके धीरे से, सर सर वो क्या बात है, सर वो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप सो रहे हैं। तो बोले वो केस पहले से डिसाइडेड है, चिंता मत करो। सो गया, डिसाइडेड मतलब उसने पेपर पढ़ के सोच लिया क्या बोलना है, अब उस हो गया, जो तुम लोगों को आपस में जो झगड़ा करना है कर लो, जब झगड़ा पूरा हो जाएगा जज उठेगा, कहेगा ये निर्णय है। इसी तरह यमराज हमारा निर्णय कर चुके हैं, है ना, हमें लग रहा है यमराज सो रहे हैं, लेकिन यमराज निर्णय कर चुके हैं। हम अभी कितना भी उछल कूद कर लें इस जीवन में, भक्ति के अलावा, भक्ति करें तब यमराज से बच सकते, लेकिन भक्ति के अलावा कितनी भी उछल कूद कर लें, हम सोच ले कि मैं इतना कार्य करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इतना धन कमाऊंगा, यमराज ने पहले से सोच के रखा आपके लिए क्या होने वाला। तो जिस दिन मृत्यु होगी, यमराज आएंगे और फिर आप कहोगे अरे आप कैसे आ गए, आपको तो आना नहीं था, क्यों? अरे मैंने इतना काम किया इतना, बोले इसीलिए तो आया हूं मैं, क्योंकि आपने इतना काम किया भगवान का नाम नहीं लिया। फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दरअसल ये जो चीजें हैं, जन्म, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सारी चीजें बाधाएं हैं भक्ति में। और ये सत्य है, जिन लोगों के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उनको जाके बोलिए भगवान का नाम, नाम नहीं निकलेगा, बाकी आप कुछ भी कर लो, वो अपना कार्य नहीं छोड़ने वाले। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम उनको कहते हैं कि कैसे आप ऐसे कार्यों में लगे हो, इनको छोड़ दो, कुछ और भक्ति करो। बोले आपसे नाम लेने के लिए मत बोलिए, और कुछ है बात तो बताइए, भगवान का नाम नहीं, वो नहीं लेते, बाकी कुछ भी उनको कह दीजिए वो करेंगे। आप उनको बोलिए कि घोड़े की रेस में जाना है, 4 घंटा खड़े रहेंगे घोड़े की रेस में, घोड़े भागेंगे, ये खुश होंगे या दुखी होंगे। आप लोग कभी गए हैं घोड़े की रेस में? घोड़े की रेस में क्या होता है पता है आपको? सारे मूर्ख लोग बैठे होते हैं उधर और बुद्धिमान घोड़े भागते रहते हैं बस, और वो सारे मूर्ख लोगों ने पैसा लगाया घोड़े के ऊपर, और घोड़े को मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर पैसा लगा। सही, घोड़े को थोड़ी पता मेरे ऊपर पैसा लगा, और वो सारे लगा कर बैठे हैं। अब इतना नहीं पता कि 50 घोड़ों में से जीतेगा तो एक ही, और पैसा कितनों को मिलेगा, लेकिन ये 5,000, 5,000, 10,000 लोग पैसा लगा कर बैठे हैं घोड़े की रेस में, और सब देख रहे हैं कब आएगा घोड़ा, कहाँ है घोड़ा का। अब घोड़े को तो पता नहीं कौन देख रहा है, वो तो अपनी स्पीड से भागता है, उसको क्या लेना देना, उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये मूर्खता है हमारी, कि हम जाकर इस जगत में हम लोग ऐसे चीज़ों पर अपना धन लगा कर बैठे हैं, ऐसी चीज़ों पर अपनी आशा लगा कर बैठे हैं, और हमने तो ऐसे घोड़े पर पैसा लगाया है जो निश्चित हारने वाला, हारने वाला क्या, वो तो रेस में भागेगा ही नहीं, ऐसे घोड़े पर पैसा लगा कर बैठे हम लोग। सही है, जैसे इस शरीर पर हम लोग कितना खर्चा करते हैं ना, आपने कभी कैलकुलेट किया, बचपन से आप जोड़िए कि जब से आप पैदा हुए तब से लेकर कितना साबुन आपने इस्तेमाल किया अब तक, है ना, कितना तेल, कितना शैम्पू, कितना परफ्यूम, कितना पाउडर, कितना क्रीम, कितना खर्चा कपड़े पे किया, चप्पल पे किया, बाल संवारने में किया, बाल निकालने में किया, बाल लगाने में किया, जो भी आप कर रहे हैं कितना खर्चा करते हैं, तो उसको जरा कैलकुलेट कीजिए, लाखों रुपया खर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपको पता था जिस दिन ये शरीर मिला, जिस दिन ये आपको शरीर मिला उस दिन ही पता था कि एक दिन समाप्त तो होने वाला है, फिर भी सारा खर्चा इसी पे, है ना। तो इसी तरह मालूम है घोड़ा भागेगा ही नहीं तो मरने वाला, ये जीतने वाला नहीं है, लेकिन रेस का सारा पैसा उस पे लगे। या फिर कंपनी, लोग शेयर में पैसा लगाते हैं ना, तो शेयर में कैसे पैसा लगाते हैं, कंपनी एडवर्टाइज करती है नया कि हम नई कंपनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, 3 साल में आप आज 10 रुपये का शेयर लीजिए, 2 साल में वो 50 रुपये का हो जाएगा, फिर 3 साल में 100 रुपये का हो जाएगा, तो हम पढ़कर हाँ उस पर पैसा लगाते हैं। लेकिन ये जब कंपनी का शेयर निकला तो शेयर निकालते समय ही कहा था 60 साल बाद कंपनी डूब जाएगी, एक पैसा नहीं मिलेगा, जितना लगाओगे सब बर्बाद होगा, कुछ रिटर्न नहीं आया। कुछ रिटर्न आता है? आपने लाखों रुपये अभी तक, हजारों लाखों रुपये साबुन पे खर्चा कर दिया, एक भी रिटर्न आया? क्या रिटर्न आया? कुछ नहीं, जो कलर था वो कलर ही वही रहने वाला है, साबुन घिस घिस के कलर तो नहीं बदलता है। लोग सोचते हैं 2 बार लगा लो, 4 बार लगा लो, कलर वही रहने वाला, साबुन घिसने से केवल साबुन का खर्चा बढ़ता है और कुछ नहीं होता है ना। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप साबुन लगा के नहीं नहाएं, कल को आप सब ऐसे आए यहाँ पर पूरी बदबू फैल जाए और हम बोले क्या हुआ, तो बोले आपने ही कहा था साबुन नहीं लगाना, तो हमने पिछले 1 महीने से लगाया ही नहीं साबुन। तो हमारा ये अर्थ नहीं है, हमारा अर्थ कहने का ये है कि साबुन हमारे को सुंदरता नहीं प्रदान करता है, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह हटा सकता है। तो ये हमारी चीज है कि हम ऐसा पैसा, अपना सारा धन उस पर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो निर्णय है वो हो चुका है, जज तो सो गए हमारे यमराज कि ये कुछ भी करने दो, निर्णय हो गया है। क्या हो गया है? इसको तो नरक में डालना ही डालना है, भक्ति करता नहीं, भगवान का नाम लेता नहीं। तो प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि ये योग्यताएं नहीं है। किसी के पास धन हो, संपत्ति हो, कभी कभी ये धन संपत्ति ये बाधा होती है भक्ति करने में, क्योंकि वो व्यक्ति को नम्र नहीं बनने देती। पद, कोई बहुत बड़े पद पर है तो उसके लिए भक्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पद की गरिमा बनाए रखूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे भक्ति करूं। अब उसको बोलिए कोई बहुत बड़ा ऑफिसर पद पे है, उसको बोलिए आके मंदिर में झाड़ू लगाए, वो नहीं लगाएगा। मंदिर झाड़ू लगवानी, मैं 10 लोगों को भेजता हूँ वो साफ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँ। अरे तुम्हें लगाना चाहिए, वो 10 लोगों को भेजोगे तो मुक्त तो वो हो जाएंगे, आप तो यहीं पे खड़े रहोगे अपना वो मेडल टांग कर, क्या फर्क होने वाला है उसमें। तो इसीलिए ये चीज़ें हमें समझनी है कि भक्ति का अर्थ है कि इन चीज़ों को छोड़कर भगवान। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, हमें कोई मेडल नहीं लेना चाहिए, हमें कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ हमारे पास है उसको भगवान से जोड़ना चाहिए बस। क्योंकि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में अन्य जगह पर, और वैसे तुलसीदास जी भी इसको कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं भगवान से अलग वो सब जीरो हैं, शून्य। प्रभुपाद भी इसको समझाया करते थे। और भगवान ये अंक हैं, अंक यानी 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 9 तक। तो जीरो की वैल्यू तब होती है जब उसके आगे अंक लगा होता है, नहीं तो आप जीरो लिखते जाइए, 0, 0, 0, 0, उसकी वैल्यू क्या, जीरो ही है। बस आपने 8 0 लिख दिए, 10 0 लिख दिए, कोई वैल्यू नहीं, उसको जीरो ही समझा जाता है। लेकिन उसके आगे आप 1 लगा दीजिए बस, तो 4 0 हैं, 1 लगा दिया 1000 हो गए, 5 हैं 10000। अब 1 लगाने के बाद आप जीरो बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक वो भगवान है, एक वो कृष्ण है, अगर उनको हमने अपने जीवन में केंद्र बनाया, उनको आगे रखा, तो फिर हमारी सारी चीजों का लाभ है। जैसे हमारी विद्या, ये जीरो है, हमारा धन जीरो है। क्यों जीरो है धन, कोई कहेगा अरे आप कैसे कह सकते हो, धन नहीं हो तो आदमी सुखी नहीं रहता। अरे सुखी रहता मरने के समय क्या करता, कौन सा धन बचा लेता बताइए। कितना भी धन हो, कितना धनवान व्यक्ति हो, बचाए आज तक, मृत्यु के समय कितना ही चिल्ला ले। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कहा मर रहा था, बीमार हो गया, मच्छरों ने काटा, भारतीय मच्छरों ने, या हमें बहुत अच्छा लगता है जिसने सारी दुनिया को जीत लिया हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो भगवान ने भारत में बुला के क्या बताया, तुम्हारे लिए तो यहाँ के मच्छर ही बहुत हैं, छोड़ दो, युद्ध युद्ध नहीं करना। तो मच्छरों ने काट लिया, मलेरिया हो गया, उस समय कोई इलाज नहीं था मलेरिया का, मर रहा है, उसकी आधी सेना तो पहले ही मर गई थी, वो भी मर रहा है। उस समय वो कह रहा है डॉक्टर्स को, वैद्यों को, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे बचा लो। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं कर सकते, आपको तो मरना ही, हमारे पास इलाज नहीं। बोले पूरा राज्य ले लो मेरा, लेकिन मुझे बचाओ। कुछ नहीं, तो क्या लाभ हुआ उसको, इतना सारा उसने जीवन भर संघर्ष करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, मरने के समय तैयार था वो साम्राज्य के बदले में 1 घंटे का जीवन लेने के लिए, मिला नहीं उसको। और इसीलिए उसने कहा जब मैं मरूं तो मुझे ऐसे दफनाना, दोनों हाथ ऊपर मेरे। लोगों ने पूछा क्यों, तो ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चले कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसने खड़ा किया, जाते समय दोनों हाथ खाली थे उसके, कुछ लेके नहीं गया, इसलिए कोई फायदा नहीं है ऐसे साम्राज्य खड़े। उसको उस समय याद आया, शायद पहले याद आ गया होता, कुछ पता चल गया होता, किसी इस्कॉन मंदिर में गया, खैर उस समय इस्कॉन मंदिर तो नहीं थे, लेकिन कहीं भक्त से मिल लिया होता, कोई बता दिया होता, तो कितना लाभ हो जाता उसको, लेकिन मरने के समय पता चला। और ज्यादातर लोगों को यही होता है, हमें मरने के समय अचानक ज्ञान आ जाता है। मरने के समय देखिए व्यक्ति फिलोसोफर हो जाता, ज्ञान हो जाता उसको, अब फायदा क्या मरने के समय ज्ञान लेके। उस समय रोता है, हाय हाय मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, कुछ किया होता तो, तब रोने का क्या लाभ है। इसीलिए भक्ति युवा अवस्था में करनी चाहिए। जो व्यक्ति युवा अवस्था में अपनी इंद्रियों को वश में रख के भगवान की सेवा करता है उसको महान मानना चाहिए। बुढ़ापे में क्या, वैसे ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। आदमी सोचे, एक बार हमने देखा था, हम बंबई में थे, तो एक कहीं जा रहे थे तो पास में एक व्यक्ति बैठा था, वो पढ़ रहा था पेपर, तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज थी कि कुछ 30 या 40 या 10 या 6, पता नहीं ध्यान नहीं, 6 दंपतियों ने, मतलब पति पत्नियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का निर्णय ले लिया। तो उनकी फोटो और उनका बहुत बड़ा न्यूज था कि 6 दंपत्ति ब्रह्मचारी बन रहे हैं, तो उनकी सारी फोटो आई थी, इंटरव्यू आया था, तो हमने जब वो ब्रह्मचारी देखा हमने कहा रहे तो थोड़ा देखना चाहिए, हमने पेपर देखा तो फोटो देखी सारे 60 के ऊपर थे। अब 60 की उम्र के बाद ब्रह्मचारी बन रहे तो कौन सी बड़ी बात है, अरे बनना था तो 10-20 साल की उम्र में बनते, तब तो कुछ महत्व होता। सारे 60 के ऊपर मतलब सब कुछ हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते तो चलो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये कोई भगवान की भक्ति नहीं है। अच्छा करना है तो यंग एज में करो, भगवान को अर्पण करते हैं तो खिला हुआ फूल दिया जाता है भगवान को, कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देते हैं? बुढ़ापा ऐसे ही है, मुरझाया हुआ फूल। हाँ जब तक वो भक्ति नहीं कर रहा, अगर वो भक्ति कर रहा है तो वो फिर फ्रेश फूल है, क्योंकि भक्ति जब तक व्यक्ति करता है उसका जीवन कभी नहीं मुरझाता, मरते दम तक वो फ्रेश फूल रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान से संपर्क में रहता। तो इस तरह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्त भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थान पर कहा गया है कि जब भक्त भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, जिस स्थान पर जिस पृथ्वी पर वो नाचते हैं गाते हैं वो पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। इसका एक प्रमाण देने के लिए पुराणों में एक कथा आती है शिवजी और पार्वती की। एक बार शिव पार्वती जा रहे थे तो शिव जी चले, पार्वती जी भी साथ साथ थी, ये नियम है पत्नी पति के साथ घूमने जाती हैं तो पार्वती जी भी चल दी। तो शिव जी आए एक स्थान पर, अचानक वो वहाँ पर ज़मीन पर लौटने लगे, पूरी मिट्टी लग गई शरीर में और लौट रहे हैं ज़मीन पर। तो पार्वती ने देखा, बोले क्या हुआ आपको अचानक, मिर्गी का दौरा पड़ गया कि क्या हुआ? तो शिव जी ने कहा कि ये वो स्थान है जहाँ पर पूर्व काल में एक भक्त ने यहाँ पर भक्ति की थी, कीर्तन किया था, इसीलिए ये भूमि शुद्ध है। तो पार्वती ने कहा बहुत अच्छा। फिर थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर से शिव जी लौटने लगे। तो पार्वती ने कहा अब क्या हो गया? शिव जी ने कहा भविष्य में एक भक्त आकर यहाँ पर कीर्तन करने वाला है, इसीलिए ये भूमि शुद्ध है, इसीलिए अभी से कर रहा हूँ। तो देखिए शिव जी सिखलाते हैं कि वो भूमि बड़ी पवित्र हो जाती है। एक स्थान पर वर्णन है कि जब भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं तो उनके पाँव के नीचे जो जमीन है, नीचे के लोक तक शुद्ध हो जाते हैं, और उनके जो हाथों की दिशाएं हैं और उन हाथों के ऊपर जितने लोक हैं उस दिशा में वो सारे शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है। और इसी को प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान का नाम लें हर रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम लोग रोज भगवान का नाम लें तो कितनी शुद्धता हमारे अंदर आ सकती, कितने हम भगवान के निकट हो सकते हैं, और उतना ही यमराज से दूर भी जाते हैं। यमराज ने चेतावनी दी है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में, अजामिल की कथा आती है, अभी कथा का तो समय नहीं है पूरा बताने का। तो उसका अंत ऐसे हुआ कि यमराज, संक्षेप में कथा ये है कि यमदूत आए लेने के लिए लेकिन ले जा नहीं पाए अजामिल की आत्मा को नरक में। अजामिल बड़ा ही पापी था, तो जब यमराज के पास पहुँचे बड़े गुस्से में थे यमदूत, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि यमदूत कहीं जाएं और वो विफल होकर आ जाएं, तो बड़े गुस्से में थे। तो उन्होंने यमराज से कहा कि हम लोग आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं। यमराज ने कहा क्या हो गया भाई, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? बोले आपकी तो कोई पावर ही नहीं है, आपके आदेश पर हम लेने के लिए गए हैं और हमें 4 लोग आए मारकर भगा दिया हमें, आपकी तो कोई पावर ही नहीं है। जैसे होता ना कि गली में कोई गुंडा होता है उसको कहा जाता है ये मेरे आदमी है हाथ नहीं लगाना, और उनको कोई मार कर भगा दे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो वैसे ही कह रहे थे कि आपसे बड़ा आपसे भी कोई बड़ा स्वामी हो गया है यहाँ पर, हाँ तो हमें भगा दिया तो इसलिए आपकी नौकरी नहीं करनी है, हम तो वो तो मार डालते हमको, हम तो बचकर जान बचा कर आए हैं। तो उससे मैंने रामराज ने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही क्या बात है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने भगवान का नाम ले लिया और उसको लाने नहीं दिया। तो उस समय यमराज को पता चला अच्छा अच्छा ये बात है, बैठो मैं बताता हूँ। तो तो उन्होंने कहा कि देखो तुम किसी को भी लाओ, किसी के भी पास जाओ, जो भी व्यक्ति के पास जाओगे उसकी आत्मा ला सकोगे, लेकिन जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक हो भगवान का, जिसके गले में कंठी हो तुलसी की, और जिसके मुख पर उनका नाम हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो तुम्हारे अधिकार से बाहर है, उसके सामने भी नहीं जाना। जाओगे तो अभी तो बचकर आए हो, अगली बार तो मरमरा जाओगे, इसलिए बिल्कुल नहीं जाना। तो यमराज ने ये कहा है कि यमराज स्वयं कहते हैं कि ये मेरे अधिकार से बाहर है। इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान के समर्पित भक्त, उनके ग्रहों की दिशाएं बदल जाती हैं। ये आश्चर्य की बात है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं भारत के, शायद राव कुछ नाम है, बहुत प्रसिद्ध हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो अभी तो काफ़ी वृद्ध हो गए। उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि जो भगवान के भक्त हैं उनको अपनी कुंडली लेकर जाना नहीं चाहिए दिखाने के लिए किसी भी ज्योतिषी को। और क्यों? क्योंकि जो साधारण व्यक्ति की दशा के अनुसार उसका प्रभाव होता है वो भक्त के लिए नहीं होता। तो इसलिए भक्त की कुंडली पढ़ने वाला भक्त ही होना चाहिए, तभी वो समझ सकता है, साधारण व्यक्ति तो गलत बताएगा, इसलिए जाना ही नहीं। ये खुद ज्योतिषी हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि जाने की आवश्यकता नहीं है भक्त को। इसका अर्थ क्या है? वो बतला रहे हैं कि भक्त जब भक्ति करता है समर्पित भाव से तो उसके ग्रहों की दिशा बदल जाती है। हम लोग तो ग्रहों में बहुत चिंता करते हैं ना, ग्रहों की, किसी को शनि लग गया, किसी को सूर्य लग गया, किसी को चंद्रमा लग गया, पता नहीं क्या क्या लगते हैं। लोग कहते हैं मेरे साढ़े सती चल रही है ना, 7.5 साल तक कुछ नहीं होगा, सर पकड़ कर बैठे रहते हैं। हम तो उनको कहते हैं भगवान का नाम लो, बड़ा अच्छा है, 7.5 साल कुछ नहीं होने वाला ना, एक जगह बैठ के नाम तो लो, कम से कम वही लाभ हो जाएगा, वैसे भी कुछ नहीं करने वाले हो, भगवान का नाम लो। तो भक्तों के लिए कोई ग्रह दशा नहीं है, भक्तों के लिए केवल भगवान है। अगर भगवान को समर्पित हैं तो ये सारे ग्रह, ये सारे नक्षत्र, ये सारी वो जो आपके वो कौन से घर में कौन से क्या है, सब घर ठीक हो जाते हैं केवल कृष्ण का नाम लेने से। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पर, और पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज यही बता रहे हैं कि भले ही किसी भी कुल में जन्म लिया हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, जापान में हो, कहीं भी लिया हो, कुछ भी करते हो आप, मांस खाते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, जो भी करते हो, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोज शराब पिए और रोज भगवान का नाम लें, बोले मंदिर में कहा था शुद्ध हो सके। इसका अर्थ ये है कि अगर वो भगवान का नाम लेने लगेगा तो धीरे धीरे शुद्ध जीवन अपने आप जी लेगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सबसे हमारी विनती है, आप में से जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, रोज माला पर जप नहीं करते हैं, कृपया जप को प्रारंभ कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस जगत में भी शांत रहने के लिए और मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति के लिए। बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के नाम को रोज लें। हमारी संस्था में हम लोग माला पर जप करते हैं, 108 मणि होते हैं एक माला में, और ऐसे हम लोग जप करके, हम लोग तो जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन आप सबसे विनती है जो आप लोग जप नहीं करते हैं तो कम से कम 2 माला जप आज से प्रारंभ करें। केवल 2 माला, आपको 15-20 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं। और भगवान ने हमें जो दिया है उसके बदले में भगवान को 15-20 मिनट देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। ये जो हवा हम लोग जिससे सांस ले रहे हैं वो भगवान ने दी है, अन्न भगवान देते हैं, जल भगवान देते हैं। कोई कह सकता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, उन जगहों पर जाके देखिए जहाँ पानी नहीं है, पैसा है, गला सूख रहा है, नोट खाएंगे क्या करेंगे, पानी है ही नहीं। हमें ध्यान है 1-2 साल पहले बेलगाम में पानी की बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अभी भी है इस साल भी, लेकिन 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। तो उसी वर्ष, उस वर्ष के 1-2 वर्ष पहले हमारे एक जान पहचान के व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया है, बहुत बड़ा बंगला। तो वो हमें बता रहे थे कि आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने फ़ोन पे हमें बताया, मैंने कहा क्यों क्या हो गया? बोले इतना पैसा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा, खरीदे कहाँ से? पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कहाँ से? ये पैसे का लेके करूँ क्या? तो इसीलिए भगवान ने हमें वो चीज़ें दी हैं जो हम अपने धन से, अपने बल से, अपनी शक्ति से खरीद नहीं सकते। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता भगवान को अर्पण करने के लिए हर रोज केवल 15-20 मिनट कम से कम दो माला जप भगवान के नाम का करें। इस हरे कृष्ण महामंत्र को कलयुग के लिए, ये कहा गया है कली संतरण उपनिषद में कि कलयुग में ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने प्रश्न किया कि कलयुग के लोगों का क्या होगा, तपस्या ये कर नहीं सकते, यज्ञ करना आता नहीं, मंत्र बोलना आता नहीं, करेंगे क्या ये लोग? तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जो भी व्यक्ति इस कलयुग में केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा उसको मुक्त करने की गारंटी भगवान ने ली हुई है, तुम चिंता मत करो। बस तुम सबको जाकर कहो कि कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ये नाम वो लोग जप करें, बाकी सब भगवान देख लेंगे। तो नारद मुनि की परंपरा में नारद मुनि के बिहाफ नारद मुनि की तरफ से हम आप सब से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप सब भी इस नाम का जप करें। हरे कृष्णा। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न आपके हों भक्ति के विषय में।